देखते हैं ओंकार ब्रह्म का यह शब्दाक्षर ब्रह्माक्षर ब्रह्म सप्त ब्रह्म यह भगवान का शाब्दिक अथवा आक्षरिक अवतार ओंकार है। इसी से गायत्री प्रकाशित हुई या इसी की व्याख्या गायत्री से सारे वेद प्रकट और सारे वेद के चार भाग में विभाग इत्यादि और इसके बाद में व्यास जी ने इसके सात तात्पर्य को ग्रहण करने के लिए इसकी व्याख्या करने के लिए लोग समझेंगे वेदों के भाव इतने गहरे हैं कि उनको समझना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए उन्होंने कुछ सरल सहज रूप में पुराणों में उसकी व्याख्या किंतु वो ऐसे अलंकारिक भाषा में ये पुराण है जो साधारण लोग भी समझे किंतु उसके गहराई को छूना बड़ा भारी कठिन है। पुराण भी कठिन अलंकारिक भाषा में होने के वजह से सब लोगों की सुविधा के लिए कुछ रोचक बनाते हुए उन्हीं विषयों को महाभारत महाभारत का भी प्रतिपाद्य वही कृष्ण है। वेदों का भी प्रतिपाद्य वेदस्य अहम सर्व वेदस्य अहमेव वेदों को भी गायत्री में भी वही है ओंकार में भी वही है। गायत्री गायन करने से त्राण करती है और उसमें छंद है उसमें तीन विकार है और ये सब गायत्री भी उन्हीं को कृष्ण को भर्गः देवस्य धीमहि गायत्री की उपासना श्री लक्ष्मी हमारे राधा जी की उपासना है स्त्रीलिंग उसमें है स्त्रीलिंग माने शक्ति सर्वोच्च शक्ति पराशक्ति की सर्वोच्च अवस्था जिसमें है उसके लिए धीमहि उनको ध्यान करते हैं। कृष्ण का नहीं गायत्री का प्रतिपाद्य कौन है श्रीमती राधिका जी है इसलिए धीमहि उनको जो परम पुरुष की अत्यंत प्रिया है सिद्ध बिलेवेड ऑफ कृष्ण सो धीमहि एनसी सुख का महीने और हार्ड प्रचोदया वो हमारे हृदय में स्फुटित रहा। इसी प्रतिपाद्य विषय को करने के लिए यह पुराण अंत में महाभारत महाभारत में ऐसी लड़ाई झगड़ा का लेकर के किया है कि साधारण आदमी भी इसके ऊपरी भाव को समझ लेंगे किंतु भीतरी भाव में प्रवेश करना भीम में दुर्योधन में युद्ध हो रहा है भीष्म और अर्जुन में युद्ध हो रहा है उनमें परस्पर बातें हो रही हैं इंटरेस्टिंग करने के लिए जो उसमें बातें हुई हैं लक्षागृह है और सब बातें हैं अर्जुन का द्रौपदी का को वर्ण करना है ये सब बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मनोहारी कथाएं किंतु कथाओं का देने का तात्पर्य क्या था भाई भर्गो देवस्य धीमहि सबका प्रतिपाद्य विषय एक है इसके बाद ही उनका मन नहीं भरा प्राणों के संकलन करने के बाद अरे ले करके जाओ
देवस्थान
बच्चा को लेकर के यहाँ नहीं आना चाहिए। उसको ले आई हारमोनियम भाई जरा ला दो। पाठ के बाद में ये सब इतना कौन जा रहा है मंगा दो मंगा दो। आप उधर में चली जाएंगे कुछ देर के बाद ही
चली जा
यही पता तो। अब इसमें सनातन धर्म की बात मैंने बतलाई। ये सब चीजें सनातन है। ओंकार कब से है? अनादिकाल से। गायत्री भी अनादिकाल है। उसका प्रतिपाद्य विषय भी अनादिकाल से है। वो कभी भी अदलता बदलता नहीं है। सदा के लिए है, सदा रहेगा। इसीलिए गीता में उन्होंने बतलाया ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव एक सनातन है। वो बस जैसा धारण करता है
वसांसि
जीर्णानि यथा विहाय नमामि गृह्णाति नरो प्राणी
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
नैनं
शिवानि। स्थाणु अचलोयं सनातन।
स्थाणु रचलो आयं किसके लिए? जीवात्मा के लिए। इसलिए जीवात्मा एक सनातन वस्तु है। वेदों में उपनिषदों में शास्त्रों में ये सब बतलाया गया। और एक और सनातन है, सनातन का भी सनातन। वो कौन है जिसे ये सनातन सब निकले हुए हैं? ओ भाग्यम ओ भाग्यम
नंद
पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन कौन है? किसके लिए कहते? जो ब्रज के लोगों के मित्र हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के प्राण प्रियतम सखा है ब्रजवासियों के। किंतु वो है कौन? पूर्ण सनातन ब्रह्म। कौन कह रहे हैं इसको? कौन रहा? ब्रह्मा जी का रहे। ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने और कई कितनी बार कहा चतुर्श्लोक में कि मैं पहले था सत असत। सत मैंने जो व्यक्त है, असत मैंने जो नहीं व्यक्त है, ये सब से पहले ये मैं था। और मैंने ही ब्रह्मा जी को या ब्रह्मा जी को कृष्ण ही उपदेश दिया। और चतुर्श्लोक में वो दूसरा श्लोक क्या है?
तुम
लोग ब्रह्मा जी को सब ज्ञान दे दिया किंतु उनको कुछ नहीं आया, उपलब्धि नहीं हुई। उपलब्धि नहीं हुई, सब ज्ञान बतला दिया। जैसे हम लोग सब भक्ति बतला रहे हैं किंतु भक्ति नहीं आ रही। तब उन्होंने अपना हाथ ऐसे कर दिया, ग्रहण गति तम माया हमारी कृपा से तुम सबको प्राप्त। और साथ ही साथ उनकी प्रेमा भक्ति की अनुभूति। कृष्ण कैसे सबसे पहले हैं, सनातन वस्तु हैं। जीवों का कृष्ण से उस नित्य सनातन से और इस सनातन से जीवों का क्या संबंध है, इसी का नाम सनातन धर्म है। ये कभी भी लुप्त नहीं। एक सनातन परब्रह्म कृष्ण भगवत्ता की सीमा, ओम प्रकाश के भी, ओम ओंकार के भी मूल, ओंकार भी इन्हीं से उपस्थित हुआ। ये उनका अक्षर ब्रह्म रूप है कृष्ण का। कृष्ण को देखते सहज नहीं किंतु अक्षर के रूप में ये प्रकाश है। ये इसी की उपासना की जाए तो धीरे धीरे खारे समुद्र को मंथन करने से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से जीवन मीठा पानी ये मिलता है। ऐसे ही ओंकार एक खरा भगवान ब्रह्म का रूप है जिसको आदमी को समझना पड़े, उनसे संबंध स्थापित करना भी कठिन। तो ये कृष्ण जो परब्रह्म की चरम सीमा है, ये हुए उपास्य, और उपासक कौन हुआ, ये जीवतत्व। दोनों के बीच का जो संबंध है ये उपासना, ये उपासना ही नित्य सनातन धर्म है। किंतु कौन सी उपासना, जो भागवत में दी गई, गीता में दी गई, जो वेदों और उपनिषदों में दी गई, वो उपासना। और सब जो देवता देवी उनकी उपासना ही ये नहीं, इसलिए कौन सी उपासना, जो भागवत पहले दिया गया गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, पहले ये। और इसके बाद में महाप्रभु ने कहा ये हो बाह्य, तब वो ले गए ज्ञाने प्रयास समुपास्य नमन्ते एव जीवन्ति सन्मुख हरिदास भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता तन्वान् मनोभि प्रायः अधिक जीतो अपेक्षित। ये सब शरणागति से भी बहुत ऊपर। भक्ति एक ऐसी चीज है जो भागवत में, गीता में, उपनिषद में दिया है, यही जीवों का, जीवों के साथ में भगवान का संबंध है और उनकी ये रिलेशन है। भक्ति रेवाइनं नयति, भक्ति रेवाइनं दर्शयति,
भक्ति वशो पुरुषः भक्ति
एव। इसलिए ये वेदों में कहा गया, ये संबंध है भक्ति, भक्ति के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी संबंध कृष्ण के साथ हमारा नहीं है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ, इसी को कैसी उपासना, ऐसी उपासना सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान के पास में जो भक्ति ले जाए। भक्ति है क्या, पराशक्ति की, सर्वोच्च पराशक्ति की लादनी और संधनी संबित का सार, जो संधनी के ऊपर में प्रकाशित होता है, यह है प्रेम। भगवान के साथ में जो प्रेम है, यही हमारा नित्य सनातन धर्म है। किंतु इतना ही कहने से नहीं चलेगा, जत भी यह वर्ष बतलाया, जस देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु प्रकाशन ये बतलाया इंगित में वेदों में, पुराण में कुछ कुछ बतलाया, और श्रीमद् भागवत में अच्छी तरह से। कौन सी उपासना, कौन सी भक्ति हमको भगवान के पास में ले जाएगी, भक्ति साधारण रूप में ले जाएगी भगवान के पास में। अब इसके लिए जैसे शांडिल्य सूत्र में लिखा परानुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में परा अनुरक्ति, अनुरक्ति जो है प्रीति है, स्नेह है, जो ये परा तत्व। तो प्रेम भी साधारण नहीं, अनुरक्ति भी साधारण नहीं, परा माया से अतीत हो, जो कृष्ण को वशीभूत करती है, इस भक्ति का नाम, इसका नाम है भक्ति, परानुरक्ति ईश्वरे सभक्ति, वो भक्ति अनुरक्ति। नारद इत्यादि ऋषियों ने भी इसका आविष्कार किया, उन्होंने भी ऐसे श्रीमद् भागवत में इसको विशेष करके और खुलासा करके कि कौन किया, चैतन्य महाप्रभु अपने आप। अब श्रीमद् भागवत में हम चलेंगे, ये भक्ति क्या है, पहले उन्होंने लिखा सबई पुंसाम पर धर्म गतो भक्ति रदम तजे जिसके द्वारा जो भक्ति, भक्ति मैंने सेवा, जो सेवा, जो चित्त की वृत्ति निरंतर तय धारावत अविच्छिन्न गति से हो, इसके प्रति अथोक्षज के प्रति, अथोक्षज मैंने क्या, इंद्रियों से अतीत जो है अथक नारायण, लक्ष्मी का नारायण के प्रति जो भाव है, ऐसे भाव को पहली स्थिति में उन्होंने भक्ति बतलाया, जो कि समस्त इंद्रियों के द्वारा अपने प्रभु की जिस प्रकार से सेवा करती है। किंतु व्यास जी यही कह करके संतुष्ट नहीं हुए, इसे और बहुत आगे ले गए, विशेष करके वेदों का विभाग कर उपनिषदों को भी प्रकाशित कर, पुराणों को प्रकाशित कर, महाभारत में गीता जैसे उपनिषद को प्रकाशित कर, और उसमें जीव कृष्ण का संबंध दिखला करके भी संतुष्ट नहीं हो सके तो नारद जी की कृपा से अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जदा पास है। उन्होंने परम पुरुष को पर संपूर्ण रूप में देखा, संपूर्ण रूप में देखने का क्या तर्क है,
रूप गुण लीला परिकर्ष
उनका जितना जो कुछ था, रूप सर्वोत्तम रूप, भगवान के जितने भी रूप हैं उनमें सर्वोत्तम रूप निसिंह राम पराग इत्यादि है, किंतु इनमें भी एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, राम इत्यादि है भगवान किंतु स्वयं भगवान एक ही चंद्र विविध रूप में दिखता है, वैसे एक ही ब्रह्म भगवान विविध रूपों में उपासना के भेद से दिख पड़ते हैं, इसलिए उनको बतलाया कृष्णस्तु भगवान। वो कैसे कैसे, जो बाल्यकाल से जिनका जन्म हुआ मथुरा में और गोकुल में, मथुरा में जैसे प्रकाशित हुए, गोकुल में जैसे उन्होंने जन्म लिया, और वहां से जितनी भी लीलाएं हुई, बचपन में कितने सुंदर हैं उनकी कैसी लीलाएं, यशोदा जी का बात्सल्य कैसे है, इसके बाद में पौगंड में अपने सखाओं के साथ में गोचारण इत्यादि जो कर रहे हैं, बंशी वादन भी अब करने लग गए हैं, अब उठती हुई किशोर अवस्था में वृंदावन की जो लीलाएं, एक ही रात में, किंतु रात कितनी लंबी,
ब्रह्म रात
सारी लीलाओं का एक तरह से संकलन है, वो उसमें समस्त लीलाएं हैं, जितने भी लीलाएं हैं किशोर की, विशेष करके गोपियों के साथ की सारी लीलाएं उसमें, इसको भी उन्होंने देखा। यशोदा जी उनके कमर को बांधते हुए देखा, दामोदर लीला भी देखा, गोपियों के पैरों में पड़ते हुए कृष्ण को देखा, ओ गोपी गीत इत्यादि भी देखा, सब सुना, गोवर्धन लीला इत्यादि भी देखा, और भ्रमर गीत भी देखा, सारी ब्रज लीलाओं को संपूर्ण रूप में देखा, जिसके बाद में कुछ द्वारका लीला इत्यादि भी देखा, और जीवों के कल्याण के लिए जस्य वैश्वी मैंने कृष्ण परम पुरुष भक्ति उपद्यता शोक मोह भया, जीवों के कल्याण के लिए उसका संकलन करके उसको प्रकाशित करके श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया। इतना देने के बाद में भी संतोष नहीं हुआ, कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु है, अखिल रसामृत मूर्ति प्रशमर रुचिरुद्धतर का पाली द्वादा प्रयाण विदुर जयति, कृष्ण द्वादश रसों के समुद्र था समुद्र है, जो अपने रसों से सबको वशीभूत कर लेते हैं, ललिता इत्यादि को भी, किंतु राधिका के वशीभूत है अंतिम में जो दिया गया राधा राधा प्रिया, माने क्या कृष्ण प्रिया राधिका नहीं, राधा के प्रिय माने क्या राधा के वशीभूत रहने वाले जो कृष्ण है, प्रेम के वशीभूत है, उस कृष्ण की वंदना कर। यदि भक्त स्वामी सिंधु नहीं होता ग्रंथ, उज्ज्वल नयन मणि ग्रंथ इत्यादि नहीं होते, तो कृष्ण के माधुर्य को समझ लेना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए रूप स्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्ति स्फूर्ति में कराई, जिसे हमारे माधुर्य को जानने, कंस ने कृष्ण को देखा, जरासंध ने कृष्ण को देखा, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा, किंतु उनके सौंदर्य से वो लोग आकर्षित हुए कि वो लोगों का क्रोध और बढ़ गया मारने की इच्छा। क्यों? कृष्ण तो वही अगासुर बकासुर कृष्ण मुरली लिए हुए बजाते हुए जा रहे हैं और उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में प्रेम का साधन करने वाला जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए अभी भी कृष्ण हमारे सामने आ जाए विशेष कुछ लाभ कह देंगे, कृष्ण हमको एक सुंदर लड़की से शादी करा दीजिए और हमको पुत्र हो जाए और करोड़ों डॉलर मिल जाए, रुपए मिल जाए और संसारी किए और हमको कहेंगे और कुछ मांगो और नहीं मांगो, क्योंकि वो आधार नहीं है, नहीं समझते हैं। इसलिए अभी वो दर्शन नहीं देंगे, जब वो प्लेटफॉर्म तैयारी हो जाएगा, शुद्ध सप्त हृदय में आएगा, वो राधा जी का ही लादनी और संबित का भाव जब आएगा तब हम लोग उनको समझ सकते हैं, उनकी सेवा इसके पहले नहीं होगी। इसलिए रूप गोस्वामी के अंदर में उन्होंने शक्ति का संचार किया। कौन सी शक्ति का? ये शक्ति का कृष्ण सोच रहे हैं लीला के अप्रकट के पश्चात, कृष्ण की लीला प्रकट हो गई इसके पश्चात में सोच रहे हैं, जगत में मुझसे सुंदर और कोई नहीं, मुझे देख करके लोगों की आंखें सुशीतल हो जाती। सब सब तो नहीं होगा, जो उच्च कोटि के भक्त हैं वही उनका दर्शन। हमारे हम हमारे देख करके जितने भी चराचर प्राणी हैं सभी लोग सभी के न्याय जुड़ा जाते हैं, अत्यंत सुशीतल हो जाते हैं। किंतु मैं राधिका जी के दर्शन करने से हमारे नये हमारी बंसी की बहुत मीठी आवाज है, मैं विश्व के सबको आकर्षण कर लेता हूँ बंसी की आवाज से, किंतु मेरी बंसी और मधुर बोली भी हार मान जाती है श्रीमती राधिका के सुंदर मधुर वाणी से। मैं सब कुछ विस्मित हो जाता हूं, हमारे अंग सुशीतल हैं, जिसकी सुशीतलता से विश्व सुशीतल हो सकता है, किंतु श्रीमती राधिका के स्पर्श में मैं मेरा हृदय
जुड़ा है पर।
किंतु विचार कर ले भय विपरी, किंतु विचार यदि किया जाए तो ये पहले हम देखते हैं, ये गोपियां राधा जी की तो बात को छोड़ो, गोपियां कृष्ण की सहेली हैं, मंत्री हैं,
सहाया गुरव शिष्या भिक्षा बांधवा प्रिय
दास दासी हैं, यहाँ तक कि गुरु भी हैं। नीचे से ऊपर जो कुछ जितना संबंध जगत में है सब कृष्ण का गोपियों के साथ में, गोपियां उनके प्रेम की गुरु भी हैं, गोपियां सब विषय में श्रेष्ठ है, कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं। तो भी एक बात है विशेष, वो क्या है? राधा जी को मैं देखता हूँ, क्या हो गया?
कारण चले गए,
राधा जी हमें देख करके पागल हो जाती हैं, राधा जी मुझे देख करके पागल हो जाती हैं, होश नहीं रहता। उस समय उनका दुख कैसा होता है? वहां विप्रलंब भाव, सच्चा प्राणी उनके इस दुख को देख करके मूर्छित हो जाते। मैं राधिका जी को देखता हूँ जो हमसे सुंदरी है, किंतु तो